ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद नवा अध्याय। अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 38। इत्थं नितिर्या ऋषिदेव झषावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान। धर्मं महापौरुष पासि युवानुवृत्तम् क्षण कलौ यत भवस्त्रियुगोत्सत्वम्। अनुवाद। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तात्पर्य, जिस प्रकार मधु तथा कैटब के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग चार हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष तीनों युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतः वे अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों से, विशेष रूप से भागवत 11.5.32 में चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा स्त्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राही यजंते ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा शिवा जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्णा भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है, वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। ओम अज्ञानस्तमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो प्रसंग में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने प्रार्थनाएं करके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक श्लोक में प्रहलाद महाराज कितने गहरे तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज के इस श्लोक में प्रहलाद महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं और एक भगवत तत्व के विषय में हम और गहराई से समझ सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो ये प्रहलाद महाराज की विशेष कृपा है। प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। महाजनों की प्रार्थना ही हम सब बद्ध जीवों के लिए बहुत सुंदर निर्देश देते हैं। तो इस श्लोक में इत्थम यानी कि इस प्रकार, किस प्रकार, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान के हयग्रीव अवतार का वर्णन किया गया था कि भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में आए और मधु और कैटव नामक जो असुर थे जो कि ब्रह्मा जी से वैदिक ग्रंथों को चुरा के ले जाने वाले थे उनका वध किया। तो ब्रह्मा जी की उन्होंने रक्षा की, वैदिक ग्रंथों की रक्षा की हयग्रीव अवतार के रूप में। इसी प्रकार इत्थम, इसी प्रकार आप नृत्रियक ऋषि जशा देव जशा अवतारे, आप नर के रूप में आते हैं, ऋषि पशु के रूप में आते हैं, ऋषि के रूप में आते हैं, देवताओं के रूप में आते हैं और मत्स्य और कछुए के रूप कश्यप के रूप में आते हैं, अलग अलग समय में अवतार लेते हैं। लोकान विभावयसि, अलग अलग लोगों के पालन के लिए, और कई लोगों को पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हंसी जगत प्रतिपान, जो लोग विरोध करते हैं उनको हंसी उनका वध भी करते हैं। धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम, इसे युगों के अनुसार जैसा युग चल रहा है धर्मम पासी धर्म का पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अलग अलग युगों के अनुसार, अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग लोकों में आप अलग अलग रूप में धर्म की रक्षा करते हैं और जो धर्म का विरोध करते हैं उनका कई बारी हत्या करते हैं। ये इस प्रकार जिस प्रकार आपने हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा जी की रक्षा की, इसी प्रकार आप मेरे सामने प्रकट हुए मेरी रक्षा करने के लिए, और अलग अलग युगों में अलग अलग ग्रहों लोकों में आपने कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी ऋषि के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में धर्म की रक्षा की है, धर्म के विरोधी तत्वों का वध किया है। ये पहली तीन लाइनों का मतलब है। उसके उदाहरण है छना कलौ यद्भव स्त्री युगो वत्सत्वम, अलग अलग युगों में आपने किया युगानुवृत्तम युगों के अनुसार, लेकिन जो कलयुग है उसमें आप छन रहते हैं, ढक के रखते हैं अपने आप को, क्योंकि कलयुग में अपने आप को ढक कर रखते हैं इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी प्रार्थना है। और हम देखते हैं जैसे कि पहले वाक्य में इन्होंने भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा की है और श्रील प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में ब्रैकेट में बताया मनुष्य जैसे राम कृष्ण वो आए, उन्होंने इतनी सुंदर लीलाएं की। तिरियक यानी कि वराह के रूप में भगवान ने गर्भोदक सागर से पृथ्वी को उठाया, हिरण्यक्ष का वध किया, और ऋषि ऋषि के रूप में परशुराम के रूप में आए, देवतागण के रूप में आए, वामन देव के रूप में आए, कश्यप के रूप में आए। जब क्षीर सागर का मंथन होना था, देवतागण और असुरगण इकट्ठे हुए क्षीर सागर से अमृत को प्राप्त करने के लिए, तो उनको मंथन करने के लिए एक बहुत बड़ी वस्तु चाहिए थी, तो बोला सुमेरु पर्वत लेकर आएंगे। सुमेरु पर्वत पूरे सोने का पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 10,000 योजन यानी कि एक योजन होता है 8 मील, 80,000 मील सोने का पहाड़, उसको लेकर उसको मंथनी के रूप में करेंगे तभी उससे अमृत प्राप्त होगा। तो देवताओं को और असुरों को अपनी शक्ति में बड़ा घमंड था, चले हम सब मिलेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। खूब उन्होंने प्रयास किया, जो लगा के हईशा किया होगा बोला, लेकिन टस से मस नहीं हुआ और धीरे धीरे सारे असुरगण और सारे देवतागण हताश हो गए और कुछ लोग बेहोश हो गए, एकदम मृत अवस्था में हो गए। उसके बाद फिर जब भगवान अवतरित होते हैं, गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं और देखते हैं दोनों असुर सब देवतागण एकदम हताश निर्जीव होकर पड़े हैं, तो भगवान करुणावश क्या करते हैं, बड़े आसानी से उस सुमेरु पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ पे रखते हैं। ये है भगवान की शक्ति। जिसको सब लोग मिटा गए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे, भगवान ने सुमेरु को उठाया और किस पे रख दिया, इतने बड़े पहाड़ को गरुड़ जी के ऊपर, और साथ में बैठ के चल पड़े और क्षीर सागर में जाकर वो सुमेरु पर्वत को रख दिया। फिर वासुकी को बुलाया गया और समुद्र का मंथन शुरू हुआ। अब जब वासुकी को ऊपर रखा, उसके आगे बांधा गया सुमेरु पर्वत को, खींचा गया, अब सुमेरु पर्वत नीचे चला गया और डूबना शुरू हो गया क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं था। तो भगवान तुरंत प्रकट हुए, किसके रूप में, कच्छप अवतार के रूप में प्रकट हुए। और कच्छप अवतार भी कैसे थे, कच्छप अवतार का जो सरकमफ्रेंस था, जो परिधि था, वो भी 1,00,000 मील का, इस पूरे ब्रह्मांड की परिधि से भी ज़्यादा, 1,00,000 मील का कच्छप अवतार। देखिए उसके ऊपर इतना बड़ा सुमेरु पर्वत सोने का, और फिर वासुकी से कर रहे हैं, जब इतना बड़ा पहाड़ कच्छप जी की पीठ पे हो रहा था तो उनको लगता है खुजली कर रहा हो कोई। तो ये है भगवान की लीला। तो ऐसे अलग अलग युगों में आप आए, अलग अलग तरीके से आपने धर्म का पालन किया, असुरों का वध किया, लेकिन कलयुग में आप अपने आप को छुपा कर रखते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। तो इस विषय में इसी श्लोक के ऊपर बहुत गहरी चर्चा हुई थी। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते हैं पहली बारी, और जैसे ही वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, और वहाँ पे तुरंत सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं, सावरुण भट्टाचार्य अपने घर में ले जाते हैं, और सावरुण भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे भाव के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के संगीगण आते हैं, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद इत्यादि, और उनको मालूम चलता है कि वो सावरुण भट्टाचार्य के घर में हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद चैतन्य महाप्रभु बाही चेतना में आते हैं, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज मैं बहुत ही विषम परिस्थिति में था, आपने मेरी रक्षा कर ली और आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, हाँ निश्चित रूप से, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं आगे से भगवान के इतने समीप नहीं जाऊँगा, गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन कर लिया करूँगा। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, और साथ में किसी को साथ लेके जाना, अकेले मत जाना। बोले ठीक है, अकेले भी नहीं जाऊंगा। फिर मैंने गोपीनाथ आचार्य जी को बुलाया, गोपीनाथ आचार्य जी उनके बहनोई हैं, तो उनको ले जाइए, आप घर का इनका पूरा प्रबंध कीजिए और इनको दर्शन करा के लाइए। तो गोपीनाथ आचार्य जाते हैं, उनको अपने घर में अलग उनका एक पूरा घर होता है, और दर्शन करा के मुकुंद के साथ वापस सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये सन्यासी बहुत ही विनीत है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, कितना सुंदर है, मेरा इसके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। इसका नाम क्या है, तो और किस संप्रदाय से इसने संन्यास लिया है? गोपीनाथाचार्य जी कहते हैं इसका नाम है कृष्ण चैतन्य, और इसने केशव भारती, वो इतने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इनको संन्यास दिया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, अच्छा केशव भारती, यानी कि ये तो सेकंड क्लास संन्यासी है, ये तो सेकंड क्लास है, और ये इतना सुंदर है, इतना युवा है, ये अपने संन्यास व्रत का पालन कैसे कर पाएगा? कोई बात नहीं, मैं इसको वेदांत सिखाऊंगा, जिससे थोड़ा भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, और अगर ये चाहे तो मैं इसको पूरी संप्रदाय में भी संन्यास दिला सकता हूँ। जब इस ढंग से बात कर रहे थे तो गोपीनाथ आचार्य को बहुत गुस्सा आया, बोला आप जानते हैं किसके विषय में बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य भी सामने बैठे थे उनके साथ ही, और शिष्य बहुत बड़े स्कॉलर थे, वेदांतिस्ट, बोले भगवान है, शास्त्र में कहाँ प्रमाण है इसका? और गोपीनाथाचार्य ने बोला, शास्त्र में प्रमाण है, लेकिन शास्त्रों को महान आचार्यों के माध्यम से समझना चाहिए। तो उनके शिष्यों ने बोला, अरे हम तो शास्त्रों को समझते हैं तर्क के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। गोपीनाथाचार्य ने बोला, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, भगवान को जानने के लिए तर्क और शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान की लेश मात्र कृपा चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जय श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा तुम जगत गुरु बनते हो, सबको शिक्षा देते रहते हो, लेकिन तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैंने देखा नहीं। तुम्हारे ऊपर भगवान की लेश मात्र कृपा भी नहीं है। अरे तुम्हारे घर में है वो, और तुमने अपने खुद अपनी आँखों से देखा है कि उसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट हुए, फिर भी कितना तुम्हारा दुर्भाग्य है तुम उसको भगवान नहीं समझ पा रहे। अब इतना बुरा, क्योंकि दोनों मित्र थे और भनवाई थे, सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लगा। कहते अच्छा तुम्हारे पे कृपा, तो इसका प्रमाण क्या है बताओ। मेरे पे तो कृपा नहीं है, तुम्हारे पे लगता कृपा है, तो प्रमाण बताओ, क्या प्रमाण है इसका। तो गोपीनाचार्य ने बोला हाँ, इसका प्रमाण है कि मुझे ज्ञान है कि ये भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के और अहंकार को ठेस पहुँची। बोले देखो नाराज मत हो, कोई अपराध वाली बात नहीं है, ये तो हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे ये भगवान है, शास्त्रों की बात कहिए। तो उसके बाद वो बताते हैं ठीक है, जब शास्त्रों की बात शुरू होती है तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो भगवान तो हो नहीं सकते, महाभागवत है चैतन्य गोसाई, ये महाभागवत मैं मान सकता हूँ, यही कली काले विष्णु अवतार नहीं, ये महाभागवत हैं, लेकिन कली में तो कोई विष्णु अवतार है ही नहीं। अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कली युग अवतारे नहीं शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार होता ही नहीं, ये प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। त्रियुग शब्द यहाँ भी आया। सार्वभौम भट्टाचार्य जगत गुरु कह रहे हैं भाई शास्त्र का प्रमाण तो ये है कि भगवान का एक नाम ही त्रियुग है, और कलयुग में तो भगवान अवतार लेते नहीं, बाकी तीन युगों में लेते हैं, इसलिए वो त्रियुग कहलाते हैं। जब ये सुना, शून्य आचार्य कही दुखी हया मन, शास्त्रज्ञ करिया तुम्हें करी अभिमाने। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं। अब देखिए ये बड़ा गहरा तत्व है। सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। वो बृहस्पति के अवतार हैं, वो बड़े बड़े सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे, बड़े बड़े सन्यासी उनसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और अपने आप को वो जगत गुरु कहते थे, और उन्होंने शास्त्र का प्रमाण दिया कि विष्णु का एक नाम है त्रियुग, कलयुग में अवतार लेते ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान है। तो गोपीनाचार्य ने बोला बड़ा दुख हो रहा है मुझे आपके शास्त्रों का ज्ञान को देखकर, है ना, आपने शास्त्र तो पढ़ लिए लेकिन दो महत्वपूर्ण शास्त्र छोड़ दिए। क्या भागवत भारत दुई शास्त्रेर प्रधान, सेई दोई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। श्रीमद भागवतम तथा महाभारत दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भागवत और महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, कलयुग में भी भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान का अवतार होता ही नहीं। कलयुग में भगवान कैसे अवतरित होते हैं? कलयुग लीला अवतारे ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करे कही तर नाम। कलयुग में भगवान का लीला अवतार नहीं होता, युग अवतार होता है, लीला अवतार नहीं होता, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते, इसलिए उनका नाम त्रियुग है। यह है शास्त्रों का गहरा ज्ञान। आपका ऊपरी ऊपरी ज्ञान था त्रियुग है, त्रियुग है, कलयुग में भगवान आते नहीं। अरे कलयुग में भगवान युग अवतार, हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, लीला अवतार के रूप में प्रकट नहीं होते। इस पहले वाक्य में जो बता रहे हैं नृ त्रियग देव ऋषि झषा अवतारई, ये सारे के सारे भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये लीला अवतार हैं, इसमें युग अवतार तो हर युग में होंगे ही होंगे। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कलयुग में भी दुष्ट हैं, कलयुग में भी भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए भगवान तो अवतार लेंगे ही लेंगे, युग अवतार है, हाँ लीला अवतार नहीं है। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, लीला अवतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और वे सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती हैं, तथा ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया निरंतरित होती हैं। तो लीला अवतार का अर्थ है कि भगवान निरंतर लीला करते हैं बिना किसी प्रयास के। एकदम अद्भुत से अद्भुत लीलाएं करते हैं, इसलिए वो लीला अवतार कहलाते हैं। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब संदेश दे रहे थे बोला था कि लीला अवतार कितने हैं इसकी गणना नहीं की जा सकती। फिर भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवत अमृत ग्रंथ में 25 लीला अवतारों का वर्णन किया है। फिर 25 लीला अवतार कौन कौन से हैं? चतुष्शन यानी कि चार कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हायग्रीव, हंस, कृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धनवंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये 25 लीला अवतारों का वर्णन किसने किया? रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवत अमृत में। चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीला अवतार के रूप में नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को घोषित नहीं किया कि मैं भगवान हूं। इन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा, ये एक भक्त के रूप में आए, इन्होंने अपने आप को ढक के रखा, और इसलिए ये लीला अवतार नहीं कहलाते, ये युग अवतारी हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, ये युग अवतारी हैं, तो इसलिए उनको त्रियुग बोला गया है, क्योंकि कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं होते, युग अवतार अवश्य प्रकट होते हैं। तो इस तरह से गोपीनाथ आचार्य जी ने स्पष्ट किया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बाद में भगवान ने षटभुज दर्शन भी कराए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को, तो उन्होंने अपने श्याम सुंदर रूप के भी दर्शन कराए, चतुर्भुज रूप के भी दर्शन कराए, षटभुज रूप के भी दर्शन कराए। और जो भक्त बहुत मासूम होते थे, जो लोग जो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते थे, वो भगवान का सुंदर रूप देखते ही भक्त बन जाते थे, भगवान उनको छूते मात्र थे ही वो भक्त बन जाते थे। और जो लोग मायावादी थे, नास्तिक थे, तो चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रयास करते थे, उनके पीछे भाग के जाते थे और उनको भक्त बनाते थे। तो हर युग में भगवान ने अपने अस्त्रों का उपयोग किया है। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा कितने अस्त्रों का वध किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में किसी अस्त्र का उपयोग नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या थे? भागवतम के श्लोक में कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पांगास्त्रवाश्रितम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते हि सुमेधसा। चैतन्य महाप्रभु के संगी कौन थे? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। संग उपंग, उपंग का अर्थ क्या होता है? अंग का अर्थ है जैसे हाथ, और उपंग का अर्थ हुआ हाथ की उंगली। तो उपंग कौन हो गए? श्रीवास आदि, ये उपंग हो गए। और पार्षद क्यों हुए? गदाधर पंडित इत्यादि। तो संग उपंग अस्त्र, और भगवान का अस्त्र क्या है? हरिनाम। जब भगवान अपने सुंदर मुख से हरिनाम लेते हैं अपने पार्षदों के साथ, अपने संग और उपंग के साथ, तो निश्चित रूप से जो मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्तियों का हनन हो जाता है। तो भगवान असुरों का वध नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष अवतार है, आसुरी प्रवृत्तियों का हनन करते हैं। हर एक कलयुग, हर एक युग में युगों के अनुरूप भगवान अवतार लेते हैं, और उसके हिसाब से धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म के विरोधी तत्वों का की हत्या करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार है। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे बलभद्र भट्टाचार्य कहने पर, तो साथ में उनके बलभद्र भट्टाचार्य थे, एक और बंगाली ब्राह्मण थे, और साथ में एक सिनोदिया ब्राह्मण थे, और एक राजपूत कृष्णदास मथुरा के ही व्यक्ति थे। तो जब आप रास्ते में आते हैं तो एक बहुत सुंदर स्थान आता है जहाँ पे गायें चर रही होती हैं और साथ में एक सरोवर है, तो महाप्रभु वहाँ विश्राम करते हैं। और वहाँ पर एक तभी ग्वाल बाल आता है और बंसरी बजाता है। महाप्रभु जैसे ही बंसरी सुनते हैं, महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण होता है, महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं और उनके मुख से झाग निकलने शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर राजा के पठान सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं घोड़ों पर, और देखते हैं कि एक सन्यासी है जो कि बेहोश हो रहा है, और ये चार लोग खड़े हैं। तो सोचते हैं कि इन चार लोगों ने इस सन्यासी को धतूरा पिला दिया है और इसके हाथ में कोई सोना हो, सोना छीन लिया है। तो चारों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अब हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम धोखेबाज हो, तुम बदमाश हो। और पठान सैनिक बहुत लंबे चौड़े थे, तो जब ये करते हैं तो जो बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ जो बंगाली भक्त हैं वो तो कांपना शुरू कर देते हैं, डरते हैं बहुत। और साथ में ये खड़े थे एक सनोदिया ब्राह्मण, बोले वो मथुरा गए थे तो वो कहाँ डरने वाले उनसे, बोले ज़्यादा मत करो, तुम्हारे जो राजा है वो कहीं मेरे सैनिक हैं, वहाँ पे जान पहचान है, समझे, तो ज़्यादा अपना वो मत दिखाओ। और राजपूत कृष्णदास भी थे, बोले मेरे पास 100 ऐसे तुर्क के सैनिक हैं और कई मेरे पास बंदूकें हैं, अभी बुलाता हूँ मैं। तो जब ये कह रहे थे तो वो थोड़े से जो पठान सैनिक थे थोड़े हिचकिचाए, तो सनोदिया ब्राह्मण को बता रहे थे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है थोड़ी देर रुको, ये जो सन्यासी अभी होश में आ जाएगा ये स्वयं आपको बताएगा कि क्या हुआ। तो कुछ ही समय के बाद चैतन्य प्रभु बाहरी चेतना में जाते हैं और जैसे ही बाहरी चेतना में आते हैं जोर से गरजते हैं हरि हरि, इतनी जोर से गरजते हैं जो पठान सैनिक होते हैं उनको लगता है जैसे वज्रपात हो गए, एकदम उनका दिल दहल गया। बोले ये क्या है, किस इतनी जोर से उछले, इतनी जोर से चिल्लाए, ये क्या है, कैसा व्यक्ति है ये। तो उसके बाद पास में गए और बोले आपको उन्होंने धतूरा पिलाया था ना, तभी आपको बेहोश किया था ना, फिर आपसे सोना खींचा ना। महापुरुष बोला ऐसा क्या है, मैं एक सन्यासी हूँ, भिखारी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं है, ये सब मेरे संगीगण हैं। तो महाप्रभु का सुंदरता को देखकर, उनके मुख से हरी हरी सुनकर उन पठान सैनिकों का हृदय भी पिघल गया। उसमें से एक वृद्ध था, उस वो जो कि कुरान पढ़ता था, तो उसने महाप्रभु से बोला कि हमारे कुरान में तो परम सत्य को निराकार ब्रह्म बताया गया है। वो चर्चा करने लगा तो महाप्रभु ने बोला नहीं, निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान का आकार है, और आपके कुरान में ही बताया गया है कि अल्लाह का रंग काला है और अल्लाह के अंग हैं, अल्लाह का शरीर है। तो इस जंग से जब उसने बताया तो उस पठान ने भी चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ली और वो भी भक्त बन गया चैतन्य महाप्रभु की। तो इस जंग से महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, दक्षिण भारत में महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से ही भक्त जो लोग थे हरी हरी कहना शुरू करते थे। और एक व्यक्ति जो गांव में जाता था महाप्रभु से मिलने के बाद, उस व्यक्ति को स्पर्श करने मात्र से ही पूरा का पूरा गांव भक्त बन जाता था। तो इस ढंग से महाप्रभु ने धर्म की स्थापना की। महाप्रभु की हम लीला में देखते हैं, महाप्रभु की लीला मुख्यतः पूरी लव स्टोरी है, इसमें ज़्यादा फाइट सिक्वेंसेज नहीं है। और भगवान कृष्ण की लीला में प्रतिदिन लंग से पहले वो दो असुरों को मारते थे और दो असुरों को मार के यमुना में स्नान करके फिर रासलीला करने जाते थे। तो भगवान कृष्ण की लीला वॉयलेंट लव स्टोरी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला केवल लव स्टोरी है ना। बीच बीच में कई बारी बहुत गिने चुने इंसिडेंट्स हैं कि महाप्रभु ने अस्त्रों का उपयोग किया। कब कब किया बताइए, जगाई मदाई, जब मदाई ने नित्यानंद पर आक्रमण किया तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया, लेकिन जब मदाई को मालूम चला, मदाई ने बताया कि इस जगाई ने रक्षा की थी, तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं जगाई को उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। केवल इतना जानने मात्र से कि जगाई ने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, महाप्रभु उससे प्रसन्न हो गए। ये महाप्रभु का अवतार है। और कब महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुलाया था, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की जब पिटाई हो रही थी 22 बाजारों में कोड़ों से, महाप्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे कि जो लोग मेरी पिटाई कर रहे हैं इनका उद्धार करो, तो सुदर्शन चक्र वापस आ गया। फिर महाप्रभु ने कैसे रक्षा की, स्वयं कोड़े खाए और अपने भक्त की रक्षा की। और कब महाप्रभु को वस्त्रों का उपयोग करना पड़ा, चांदकाजी में तो सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं किया। जब बलभद्र काला कृष्णदास के साथ महाप्रभु दक्षिण भारत के उसमें थे, तो भटहरी जो आदिवासी लोग थे उनकी स्त्रियों से महाप्रभु के सेक्रेटरी जो थे वो आकर्षित हो गए। तो महाप्रभु ने क्या हो रहा है, महाप्रभु ने उसकी चोटी पकड़ी, उसको खींच के लाए। तो भटहरी ने महाप्रभु पे आक्रमण किया, अपने अस्त्र फेंके। तब महाप्रभु ने योग माया से ऐसा किया कि जो वस्त्र भटहरी फेंक रहे थे वही अस्त्र उनके ऊपर आ गए, वापिस चले गए और उन पर वो आक्रमण इस ढंग से हुआ। तो महाप्रभु की लीला में बहुत कम ऐसे हमें युद्ध दिखने को मिलता है या महाप्रभु ने कोई क्रोध में आके बात की हो। महाप्रभु ने सारे के सारे असुरी प्रवृत्तियों का उद्धार प्रेम से किया, इसलिए महाप्रभु का एक आंदोलन प्रेम हरिनाम संकीर्तन है। केवल हरिनाम संकीर्तन नहीं है, प्रेम हरिनाम संकीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कलयुग की ये विशेषता है। भागवतम के 11वें स्कंद में राजा निमि नवयोगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं, करभजन जी से, कि आप अलग अलग युगों की विशेषता बताइए और अलग अलग युगों में भगवान कैसे कैसे अवतरित होते हैं इसके विषय में बताइए। तो करभजन मुनि पहले प्रत्येक युग के लोगों की गुण बताते हैं कि सतयुग में जो लोग थे बहुत शांत थे, सतोगुण में थे, द्वेष रहित थे, सुहृद थे, सर्वगुण संपन्न सतयुग में। त्रेता युग में लोग धर्मनिष्ठ थे, धर्म का पालन करते थे, ब्रह्मवादी थे, पूरा ब्रह्म के सिद्धांतों को जानते थे। द्वापर युग में जो भक्त लोग थे उनको बताइए जिज्ञासु थे परम सत्य के बारे में जानने के लिए। इस तरह से प्रत्येक युग के लोगों की क्वालिफिकेशंस बता रहे थे और साथ साथ में प्रत्येक युग में कौन कौन से अवतार है उनके लक्षण बता रहे थे। फिर आया कलयुग। कलयुग में उन्होंने लोगों के गुणों की चर्चा ही नहीं की क्योंकि कलयुग में गुण है ही नहीं। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो ही उपद्रता। कलयुग में लोग मंद सुमंद एकदम सुस्त हैं और आध्यात्मिक विषय के बारे में कोई रुचि नहीं, दुर्भाग्यशाली हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं। तो इसका क्या गुणों का वर्णन करें? कलयुग के लोगों का उन्होंने गुणों का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं ये सारा करने के बाद नाना तंत्र विधाने न कलौ अपि तथा श्रेणु। सब कुछ बता दिया द्वापर तक भगवान के क्या क्या अवतार आते हैं, फिर बोला कलौ अपि, आपको जान के हैरानी होगी राजा ने, में कली में भी भगवान की पूजा की जाती है। कलौ अपि, अपि शब्द के बता रहे हैं कि कली में भी भगवान की पूजा की जाती है। अच्छा कैसे? नाना तंत्र विधाने न, तंत्रों के विधान के साथ, ऐसे नहीं कि उल्टी सीधी पूजा जाती है। पंचरात्र हैं, तंत्र विधान से कलयुग में भी पूजा की जाती है, लेकिन वो पूजा बड़ी श्रेष्ठ है। फिर वो बताते हैं ये श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्तवार पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंते ही सुमेधसा, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण का वर्णन करते हैं लेकिन उनकी जो कांति है वो अकृष्ण है। कृष्ण कांति नहीं है, कृष्ण लेकिन उनके शरीर की कांति कृष्ण नहीं है। यज्ञ संकीर्तने प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं अपने पार्षदों के साथ, और इस ढंग से जो बुद्धिमान लोग हैं वही इसमें जुड़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी इस लेक्चर, इस श्लोक के में उन्होंने एक लेक्चर दिया मायापुर में, और वो उस दिन गौर पूर्णिमा ही थी, तो उसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार है ये। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर युग में और उन्होंने सारा ज्ञान दिया कि कैसे हम उनकी शरण प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये भी बताया कि एक जो पूर्ण रूप से योग में पूर्ण नहीं है वो किस किस भाव से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। श्री प्रभु बताते हैं रसोपियम सिकोनते है प्रभास्मि शशि सूर्य। अगर आप भगवान को बारे में ज़्यादा नहीं समझ सकते, आप पानी तो पीते हैं ना, तो पानी पीते हुए आप जब पानी का स्वाद आ रहा है उसको भगवान का स्मरण कीजिए, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें तो भगवान का स्मरण कीजिए। इतना आसान तरीका बताया प्रभुपाद, कहते हैं इतना आसान तरीका भी बताया फिर भी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इससे ज़्यादा आसान क्यों बताते? क्योंकि श्री कृष्ण ने केवल थियोरेटिकल नॉलेज दिए, करके नहीं दिखाया। तो भगवान ने बोला कि कलयुग में लोगों को इंस्ट्रक्शन देने से काम नहीं चलेगा। कलयुग कलह का युग है और कलयुग में दोगलापन है। कलयुग में व्यक्ति इतना चिंतित रहता है, इतना परेशान रहता है, वो किसी की इंस्ट्रक्शन सुनना नहीं चाहता। कलयुग में भगवान ने बोला भैया मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे प्रैक्टिकली आके करके दिखाना पड़ेगा कि भक्ति कैसे करनी है, मैंने अपने ही आदेशों को पालन करके दिखाऊंगा। तो फिर कलयुग में भगवान कृपावश चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और फिर खुद करके दिखाते हैं इस गीता के आदेशों को अपने जीवन में उतार के। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे आप मेरी मालिश करते हो रोज और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलता हूँ ऐसे नहीं ऐसे मालिश करो, तो मैं जब तुम्हें सिखाता हूँ ऐसे मालिश करो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिष्य बन गया तुम गुरु बन गए। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ खुद कैसे मेरी मालिश करो। इसी ढंग से भगवान खुद अवतरित होते हैं ये सिखाने के लिए कि उनकी भक्ति कैसे करें। तो भागवत में 11 स्कंद में बताया गया है कि ये जो हरि नाम की महिमा हर युग में थी, ये नहीं कि हरि नाम कलयुग में ज़्यादा प्रभावशाली हुआ, नहीं, हरि नाम की महिमा हर युग में थी लेकिन सत्युग के लोगों ने इस हरिनाम को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जीव गोस्वामी पाद जी बताते हैं सत्युग के लोगों में इतनी ज़्यादा योग्यता है कि उन्होंने बोला कि वह अपने होठ हिलाकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, हम बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, 60,000 साल तक ध्यान लगाएंगे। वो कहेंगे जैसे आप जानते हो ना, किसी को छोटी सी बीमारी हो और किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चला जाए तो वो तो कहीं टच करा देगा और डरा देगा आपको, आपको थोड़ा सा फोड़ा हो गया यहाँ पर तो वो तो कैंसर के कहीं टच कराएगा, बायोप्सी कराएगा, ये कराएगा, बोले कुछ खतरा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ दर्द होता है क्या, यहाँ दर्द होता है, इसको उठाओ, हो गया था हमारा थोड़ा सा वो कि कैंसर के पास चले, बोले कुछ भी हो सकता है, तरह तरह के घुमा के देखा, यहाँ दर्द हो रहा है, बोले दर्द नहीं हो तो कैंसर हो सकता है, अरे परेशान। तो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी साधारण तरीका नहीं अपनाते है ना। जैसे आइंस्टाइन का एक जोक था ना कि क्या था, फॉरगेटिंग, होल था उसमें से बिल्ली कैसे निकली था ना एक, हाँ दो बिल्ली थी तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्ली थी एक छोटी बिल्ली थी, एक बड़ा होल बनाता था दोनों बिल्ली निकल जाती है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसने क्या किया, दो होल बनाए, बड़ा होल बड़ी बिल्ली के लिए, छोटा होल छोटी बिल्ली के लिए। कॉम्प्लिकेटेड दिमाग है। तो इसी ढंग से जो सत्यों के लोग हैं, दे आर टू सोफिस्टिकेटेड, टू क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। इतना सरल भगवान को ऐसे मजा ही नहीं आएगा, कुछ कुछ तपस्या करेंगे तब भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए वो इतने ज़्यादा योग्यता होती है कि वो सरल विधि को अपनाते नहीं है। दूसरा कारण, सत्युग में कोई द्वेष नहीं करता एक दूसरे से। जब कोई द्वेष नहीं करता, कोई दूसरे को तंग नहीं करता, और सभी सुहृद हैं, एक दूसरे के हितैषी हैं, सबका मन शांत है, ऐसे में कौन भक्ति करेगा। ऐसे में वो ध्यान लगाते हैं लेकिन बहुत गहराई से भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। अब कलयुग में आइए। कलयुग में इतना दुर्भाग्यशाली हैं सब, इतने ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। अभी कौन सा वो आया तूफान, नीलोफर, कितना सुंदर नाम है नीलोफर, लेकिन कितनी तहश नहश मचा दी इसने गुजरात में। इससे पहले आंध्र प्रदेश में आया, उड़ीसा में आया, बद्रीनाथ में बादल फूटा, यहाँ पे जम्मू में हुआ, ये क्या हो रहा है। इतने संकट, इतनी तरह तरह की बीमारियाँ है ना, जैसे हम तो देखते हैं आजकल हर किसी को गली में कोने कोने में कैंसर फैला हुआ है। हमें याद है बचपन में कैंसर होता था, फिल्मों में दिखाते खाली हीरो को कैंसर होता था। कैंसर एक राजसी रोग था, मतलब कि लाखों में किसी एक को होता था, अगर हीरो को कैंसर हो गया तो फिल्म सुपर हिट हो जाती थी। आजकल तो हर किसी को कैंसर है। तो इतना मतलब कि दुर्भाग्य हो गया, नई नई बीमारियाँ, नए नए वायरस, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लोग इतना परेशान हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि पूरे हृदय से बिल्कुल असहाय होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल असहाय अवस्था में होकर हम भगवान के नाम का जप करें। इसलिए कलयुग के लोगों को ज़्यादा सौभाग्यशाली बताया गया है। भगवान की प्रकृति है कृपा करना, लेकिन भगवान उन पे ज़्यादा कृपा करते हैं जो असहाय अवस्था में होकर उनकी शरण लेते हैं, असहाय अवस्था में भगवान को जोर से पुकारते हैं, इसलिए भगवान उन पे ज़्यादा कृपा करते हैं। सत्युग के लोगों को ये प्रेम प्राप्त नहीं होता, लेकिन कलयुग के लोगों को बड़ी आसानी से प्रेम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो असहाय अवस्था में भगवान को पुकार सकते हैं। सत्युग की परिस्थितियाँ ऐसी है ही नहीं कि वो असहाय हो जाए, सब कुछ इतना बढ़िया है। नहीं, कलयुग में क्षण क्षण पे पदम पदम यद विपदम, आपको हर स्थिति में धोखा मिलता है। जिन पे आप विश्वास करते हैं वही आपको धोखा दे जाते हैं, पीठ पे छुरी घूम देंगे। आप किस पे विश्वास करें, केवल हरि नाम, हरि नाम और हरि नाम के भक्तों पर विश्वास करना, बस। इसके अलावा और कहीं हम विश्वास कर ही नहीं सकते, इसलिए पूर्ण रूप से हम शरण ग्रहण करें। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं, जो सारग्राही हैं, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वो इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है। जैसे कि शरीर में इतने दोष हैं, इतनी बीमारियां हैं, इस पूरे शरीर का सार क्या है, आत्मा। इस ढंग से कलई दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें महान गुण क्या है, कीर्तनाद एव कृष्ण से, केवल कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना बड़ा है। आप सोचिए, कोई एक योगी है, सत्युग का योगी अभी बैठा हो और हिमालय में तपस्या कर रहा हो लाखों लाखों साल से, और उसको मालूम चला कलयुग का एक शराब पीने वाला, मीट खाने वाला, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहा है और भगवा धाम चला गया। क्या बात है, पागलों में मैंने दाढ़ी इतनी बढ़ा ली, मैंने जटाएं इतनी कर ली, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, पानी में चल सकता हूँ, अग्नि में घुस जाता हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हो जाता हूँ, इतनी तपस्या की। और ये साधारण सा, ये तो घर में रहता था, सारे नियम तोड़ता था, ये क्या हो क्या रहा है? वो चाहे तो भगवान पे केस कर सकता है, ये कहाँ कहाँ का न्याय न्याय, ये क्या है बताइए मुझे, जरा किसने ज़्यादा मेहनत की है? ये कलयुग है स्पेशल, तो हमने सार को ग्रहण करना है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो दोषों को नहीं देखेंगे, दोषों की उपेक्षा करेंगे और सार को ग्रहण करेंगे। जिस राज्य में एक अच्छा राजा है, प्रभावशाली राजा है, उस राजा के रहते हुए उस राज्य में कोई चोर डाकू नहीं रह सकते, वो भाग जाएंगे। इसी ढंग से कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन अगर कोई हरि नाम की शरण लेता है तो सारे के सारे दोष और अनर्थ अपने आप भाग जाएंगे। तो ये हमें अपने सौभाग्य के बारे में मालूम होना चाहिए, विशेष कृपा है। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो इसके दीन बंधु प्रभु बता रहे थे प्रभुपाद तिरुपात दिवस के महोत्सव पे कि हम लोग तो बिल्कुल पतित थे, बड़े से बड़ा पाप करते थे, सारे लोगों ने हमें तिरस्कार कर दिया था। नहीं, प्रभुपाद ने आगे देखा ये जो हिप्पी लोग हैं इनके अंदर एक गुण है, उन्होंने हिप्पियों के जीवन का सार निकाला। क्या गुण है? कि ये जीवन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। बस प्रभुपाद ने इस सार को पकड़ा और फिर हम सबका उद्धार कर दिया। लेकिन प्रभुपाद भी कहते हैं कितने गंदे हैं, नहाते भी नहीं हैं, नंगे घूमते हैं, क्या खा क्या खाते पीते हो, छी भाग जाओ यहाँ से। नहीं, प्रभुपाद ने देखा नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इनको किसी बात का उत्तर नहीं मिल रहा, वो उत्तर मैं दूंगा। तो इसलिए ये हमारे जीवन में अप्रोच होनी चाहिए। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन का पूरा आधार ये संकीर्तन है। इसी संकीर्तन से हम भगवान को जान सकते हैं, इसी संकीर्तन से हम अपनी और दूसरों की आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से संकीर्तन को अपनाना चाहिए। संकीर्तन का अर्थ है संग और कीर्तन, हरिनाम और भक्तों का संग। बताया गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। बड़े बड़े ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन के माध्यम से हम परम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें महाप्रभु कोई योग्यता नहीं देख रहे किसी की, कोई भी व्यक्ति, किसी भी अधम से अधम व्यक्ति भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन संग में अकेले वो कीर्तन नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है इसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल है। तो ये हमें करना है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के लेक्चर में बता रहे हैं, आज के श्लोक में संकीर्तन करना है और संकीर्तन के द्वारा हमने भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं पूरा जीवन हम संकीर्तन करते रहें तो हमें जिस वेपन का, जिस प्रोसेस का उपयोग करना है वो है त्रिणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कलयुग में संग में ही शक्ति है और कलयुग में संग में रहना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कलयुग कलह और दोगलेपन का युग है। यहाँ पे तो छोटी बातें बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, बिना किसी बात की लड़ाई हो जाती है, और रहना भी संग में कीर्तन है तो ये चैलेंज है। तो इस अवगुण को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, इस श्लोक को अपने जीवन में उतार कर। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम कीर्तन करना चाहते हैं और हम भगवान को जानना चाहते हैं, बिना इस श्लोक के माध्यम का आश्रय लिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए और इस श्लोक में हम ये जो चार परिस्थितियां हैं, अपने आप को घास से विनम्र, पेड़ से ज़्यादा सहनशील, दूसरों को मान देना, खुद मान की अपेक्षा ना करना, इसको कैसे करें? संकीर्तन में जुड़े करते रहें। इससे सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कीर्तनीय सदा हरि, जुड़े रहें, कीर्तन करते रहें, करते रहें, करते रहें। अपने आप परिस्थितियां हमें विनम्र बनाएंगी, सहनशील बनाएंगी। छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए लोग हमारा अपमान करेंगे, हमें गलत समझेंगे, हम पे गलत आरोप लगाएंगे, हमें बहुत अंदर से विचलित होंगे, मत छोड़ना। यही एकमात्र है, कहीं भी चले जाएंगे ये कलयुग के लक्षण हैं। हर जगह पर हमें काटा जाएगा, नोचा जाएगा, दुखा मिलेगा, सब जगह होगा। अगर भक्तों के बीच में भी ये अनुभव हो रहा है सहन करते रहे, लेकिन संकीर्तन को ना त्यागें। कीर्तन करके भक्तों के साथ करें, निश्चित रूप से धीरे धीरे सारे गुण विकसित होंगे और हम अपने आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे और भगवान को भी जान पाएंगे। शिला प्रभुपाद जब विदेश में जाते थे, किन किन भीषण परिस्थितियों का उनका सामना करना पड़ा। प्रभुपाद एक बार फ्रांस में गए, एक ऑडिटोरियम बुक कराया, वहाँ जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। कीर्तन के बाद बहुत बड़े आसन लगाया भक्तों ने और प्रभुपाद वहाँ बैठ के प्रवचन देना शुरू करने लगे। जैसे ही वो आसन पर बैठे, कुछ वाइब्रेशंस बदल गई और वहाँ के लोकल जोर जोर से बोलने लगे। तो प्रभुपाद अपने भक्तों से पूछा, क्या बोल रहे हैं? तो भक्तों ने बोला नहीं। बोलो, क्या बोल रहे हैं बताओ? बोला, प्रभुपाद दे आर अब्यूजिंग यू, कि कौन ऐसा व्यक्ति हमारे सामने इतने बड़े आसन पर बैठ रहा है। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद, नो प्रॉब्लम, नो लेक्चर, ओनली कीर्तन। प्रभुपाद उठ के चले गए और कीर्तन खाली होता रहा, है ना। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ प्रभुपाद को देखनी पड़ती थी। प्रभुपाद कई बार इंटरव्यू देने जाते थे तो वो ऐसे इंटरव्यू होते थे, वो फेमस होते थे, कि जिस व्यक्ति को बुलाया उसको हैरास करके भेजना है, परेशान करके भेजना है, उस पर सिगरेट का धुआं फेंकेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। प्रभुपाद के साथ भी ऐसा किया नहीं, प्रभुपाद बिल्कुल संभाव रहे। बाद में वो व्यक्ति बोलता है इंटरव्यू देने वाला, आई मस्ट एडमिट यू आर ए परफेक्ट जेंटलमैन। तो ये प्रभुपाद ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभुपाद इसका प्रचार कर पाए। और हम लोग भी देखते हैं, हम लोग संकीर्तन करते हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियाँ वो धीरे धीरे समाप्त होती हैं और दूसरों की भी आसुरी प्रवृत्तियाँ समाप्त होती हैं। अभी केशव बलराम प्रभु जो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वर्ल्ड के हमेशा टॉप 5 में रहते हैं, तो ये बता रहे थे कि इन्होंने जब बुक बांटी एक व्यक्ति को, उसका नंबर लिया, इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, कुछ दिन के बाद इनको फ़ोन आता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचा लिया। मैं जिस जीवन की परिस्थिति में था, मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपकी पुस्तक ने आपने मुझे दी है, मैंने अब आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया है। ये कोई दूर दूर देश की कहानी नहीं है, साक्षात इनका एक्सपीरियंस है। भैया को उन्हें कहानी ये बता रहे थे कि पोलैंड में दो भाई थे जिनको कि चोरी करने की आदत थी, कहीं भी घर में घुस जाते थे, चोरी करते थे। एक बार ऐसे किसी घर में घुसे चोरी करने के लिए, तभी घर का मालिक आ गया तो फटाफट खिड़की से भागने लगे। बोले, खाली हाथ जाना तो हमारी बेइज्जती है, कुछ ना कुछ तो लेके जाएं। तो टेबल पर एक पुस्तक पड़ी थी, वो पुस्तक उठा के भाग गए और रास्ते में पुस्तक खोली तो प्रभुपाद जी की पुस्तक थी। तो एक भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी नहीं लगी, दूसरे भाई से शेयर करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों भाई दीक्षित भक्त बन गए। करने गए थे चोरी, भगवान ने उनका हृदय चुरा लिया। तो ये संकीर्तन आंदोलन बहुत परम शुद्ध है, परम शुद्ध है। हम नहीं जानते महाप्रभु क्या कृपा कर रहे हैं। तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि महाप्रभु हैं छन अवतार, लेकिन हमने इनको छन अवतार नहीं रहने देना। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कर्तव्य है कि महाप्रभु को हमने सबसे प्रसिद्ध भगवान बनाना है, अब हमने इसको अनकवर करना है। महाप्रभु बोल रहे हैं, पृथ्वी आशे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। गली गली गाँव गाँव में महाप्रभु के नाम का हमें प्रचार करना चाहिए। गली गली गाँव गाँव में लोगों को मालूम होना चाहिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद है। उल्टे सीधे जगत गुरु घूम रहे हैं, जो कोई जानता भी नहीं, लेकिन हमें मालूम, हमें बताना चाहिए कि प्रभुपाद हैं जगत गुरु, असली भगवान है चैतन्य महाप्रभु। अरे कलयुग में जब तक लोग शिला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, दुर्भाग्यशाली ही रहेंगे। कलयुग में लोगों के भाग्य का उदय होने का एकमात्र उपाय है शिला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करें। शिला प्रभुपाद से बड़े आचार्य कलयुग के और कोई नहीं हुए, स्वयं शिला महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में घोषणा की है। कल हम बता रहे थे, समय कम हो रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर वो जीव गोस्वामी जी को भेजते थे। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत धीरे चल रहा है क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम क्या करें, लेकिन भविष्य में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि खूब प्रचुर मात्रा में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को बांटेगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने शिला प्रभुपाद जी के लिए घोषणा की है इसे। तो हमें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए और ये महाप्रभु जो छन अवतार, इनको छन नहीं रहने देना। बोले महाप्रभु तो छन है जी, छन है, छन ही रहेंगे, नहीं। महाप्रभु की आ गया कि मैं छन अवतार हूँ, लेकिन अब आपको इसका प्रचार करना है। क्यों प्रचार करना है? मेरे जाने के बाद कोई उनके सामने बोलता तो महाप्रभु कानों पे हाथ लगाते थे। ये हमारा कर्तव्य है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं किस खेत की मोलूँ, महाप्रभु को मैं क्या बोलूँगा, मैं तो छोटा मोटा व्यक्ति। अरे नहीं, अब हम इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, अब इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, हमें पूरी शक्ति प्राप्त है और अगर हमने इस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया तो ये कृपा हमसे छीन ली जा सकती है। ये कृपा है, ये स्पेशल मर्सी है, स्पेशल प्रेरोगेटिव है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और जो हमारे अनर्थ हैं इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जो एक बार इस आंदोलन में जुड़ा है उसका भगवत धाम जाना 100% गारंटेड है। हम भगवत धाम पहुंच चुके हैं, अभी हमारे अंदर बहुत काम क्रोध सब कुछ है, लेकिन हमने हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू कर दिया है, भगवान ने हमारा नाम नोट कर लिया कि इस भक्त को ऊपर लाना है। बैक टू गॉड हेड की टिकट है हमारे पास, डेट हमने डालनी है कि इसी जन्म में नहीं भगवान थोड़े और ऐश करने दो, ठीक है कितने जन्म चाहिए, ऑल एंड 1 करोड़ जन्म ले लो, 1 खरब जन्म ले लो, आना तो जरूर है आपको, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बेहतरी इसी में है कि जल्दी से जल्दी वापस जाएं, अपनी आश्रित पूर्तियों को भी समाप्त करें, दूसरों की आश्रित पूर्तियों को भी समाप्त करें। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में खूब जोर शोर से परेशानियां हमारे जीवन में रहेंगी, क्या देखना है, सार देखना है। कलई दोष निधि राजन, कोई भक्त हमें तंग कर रहा है उसमें दोष है, क्या देखना है, सार देखना है कि संकीर्तन में क्या मदद कर रहा है, कैसे हरि नाम का जप कर रहा है, किस ढंग से प्रचार में प्रभुपाद जी को सहयोग कर रहा है, सार ये हम जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम त्रिनादपि सुनिश्चित अपने जीवन में अनुकूल कर पाएंगे। नहीं तो इतने दोष हैं मुझ में, मैं आप सब में हैं, बुरा मत मानिए, दोषों का ही कीर्तन करते रहेंगे, संकीर्तन नहीं होगा। चॉइस हमारे पास है, दोषों का कीर्तन करना है कि दोषों के बीच में दोषों के जो राजा हैं जो सब दोषों को भगा देंगे, संकीर्तन, मिलकर हाथ मिलाएं और जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से हम सब मिलके भगवान के धाम में जाएंगे और वहाँ पे इसी रंग से हम कीर्तन करेंगे। ये आपको हम कोई सपना नहीं बेच रहे हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बड़े सस्ते तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत चीप बात कर रहे हैं, इतना आसान थोड़ी है भगवत धाम जाना, इतना ही आसान है। ये चैतन्य महाप्रभु, हमारे कोई योग्यता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की विशेष योग्यता है, इस कलयुग की विशेष विशेष विशेषता है। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। One or two comments here. इनका प्रश्न है कि कलयुग में और भी तो बहुत से आचार्य आए, रामानुचार्य आए, मध्वाचार्य आए, तो वो उन्होंने महाप्रभु को इतना रिकग्निशन क्यों नहीं दिया, है ना? तो बोले कि बाकी आचार्यों को शास्त्र पढ़ने के बाद भी ज्ञात नहीं हो पाया कि महाप्रभु भगवान है, ऐसा प्रश्न ये है कि और भी तो वैष्णव आचार्य हुए हैं गौड़िया वैष्णव आचार्यों को छोड़कर दूसरी संप्रदायों में, तो उनको शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी ये मालूम क्यों नहीं चला कि महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, तो ये छुपा के क्यों रखा गया? बहुत ही ये विशेष अवतार है, और विशेष अवतार होते हुए भी हर किसी को प्रकट नहीं हुआ, जो वास्तव में वेदों का बहुत छिपा हुआ, वेदों में वैसे ही भक्ति बहुत छिपी हुई है, और भक्ति में भी ये कलयुग के जो अवतार चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो पूरा वर्णन है अर्थवेद में भी है और उपनिषदों में भी है, ये बहुत छुपा हुआ है, बहुत छुपा हुआ है, विशेष कृपा से ही ये उदित होता है। भगवान को पहचाना एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब भगवान कृष्ण भी इस धराधाम पे थे तो प्रभुपाद कहते हैं कि 100-125 लोगों को मालूम था ये भगवान है, केवल 125 लोग थे, अराउंड 125 पीपल ओनली न्यू कि कृष्ण भगवान है, बाकी सब तो उनको ऐसे समझते थे अपने परिवार के सदस्य ही हैं। तो भगवान के विषय में जानना इतना आसान नहीं है, हम लोगों को बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु ने जिंग से प्रस्तुत किया है। हाँ, अर्जुन को प्रभु जी कह रहे हैं, अर्जुन को भी नहीं मालूम था, यदुवंशीज को भी नहीं पता था, सब उनके आमने सामने घूमते थे, किसी को पता नहीं था ये भगवान है। हम लोग अब महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से हमें लग रहा है कि प्रभुपाद के आने से पहले भी किसको मालूम था भगवान कौन है? गीता भी थी, गीता पे प्रवचन भी होते थे, भागवतम पे सप्ताह भी होते थे, सब कुछ होता था, सब कुछ बोलते भी थे, अनन्य भक्ति योग के ऊपर सब बोलते भी थे, लेकिन कोई बोलता नहीं था कृष्ण भगवान है। तो हम लोग इतनी आसानी से सब मालूम चल गया कृष्ण भगवान है, तो बड़े चीप ले रहे हैं। अरे बड़े बड़े योगियों को नहीं पता लग कृष्ण भगवान है, अब हम ये जान नहीं रहे परम सत्य कौन है। जैमिनी ऋषि, पतंजलि ऋषि, अष्टवक्र, वो भी नहीं जान पाए कौन भगवान है, कॉज ऑफ कॉज ऑल कॉजेज क्या है। हमें इतनी आसानी से मालूम चल रहा है, इतनी बड़ी कृपा, और हम समझ नहीं क्या कृपा है।
वो ये भी नहीं जान पाए कि कृष्ण भगवान है,
महाप्रभु तो क्या है, कृष्ण को नहीं जान पाए तो कृष्ण से गहरे तो और महाप्रभु हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कहना है कि जो त्रिनादि श्लोक है इसको दो भागों में बांटे हैं, स्वरूप और तटस्थ लक्षणों में। तो इसका स्वरूप लक्षण है कीर्तनीय सदा हरि, और तटस्थ लक्षण है पहले के तीन लाइनें। निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसा ही है, सनातन गोस्वामी जी की यही टीका है कि कीर्तनीय सदा हरि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, कई बार कीर्तनीय सदा हरि है, बाकियों के बारे में अगर ध्यान नहीं देंगे, इसके लिए एस्पायर नहीं करेंगे, तो वो आएंगे नहीं कभी। अगर हम अपने ही घर में रहेंगे, सबके प्रति अपराध करते रहेंगे, सोचेंगे ही नहीं, कॉन्शियस ही नहीं रहेंगे इस विषय में, तो फिर नहीं होगा। लेकिन मुख्यतः ये अपराध कॉन्शियस ना होगे, कीर्तन कॉन्शियस होना है, तो अपने आप उससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न में हमने इसे बहुत चर्चा की, बहुत इस पर अध्ययन भी किया, तो परिणाम इसका निष्कर्ष ये निकला कि कल्कि अवतार जो हैं वो बिल्कुल कलयुग के अंत में आते हैं, संध्या में। तो जैसे कल्कि आते हैं, कलयुग समाप्त हो चुका है, तो कल्कि को तो कलयुग का माना भी नहीं जाएगा। बुध अवतार जो हैं कलयुग के प्रारंभ होने के 2000 वर्ष बाद आते हैं फिर, और बुध को लीला अवतार भी बोला गया है, लेकिन किसी कारणवश से बुध को कलि का अवतार नहीं माना गया है। वो लीला अवतार में काउंटिंग है, नहीं कलयुग का लीला अवतार नहीं माना गया। इसमें रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि कई बारी बुध आते हैं, कई बारी बुध नहीं आते हैं, किसी कलयुग में आते हैं, किसी कलयुग में नहीं आते, लेकिन इस कलयुग में जिसमें महाप्रभु आते हैं उसमें जरूर आते हैं। तो उनको काउंट नहीं किया उन्होंने। और इस कलयुग में आए हैं तो उनको लीलावतार माना गया, लेकिन उनको काउंट नहीं किया उस पर, इससे त्रियुग बोला गया। हाँ दैट, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आज पुरानी दिल्ली में बहुत बड़ी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये दिल्ली की प्रमुख रथ यात्रा है, दिल्ली के सभी मंदिर इसमें बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, और विदेश से भी बहुत भक्त आते हैं। प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ सदस्य और शिष्य और सन्यासीगण भी आते हैं, उनका दर्शन करने का अवसर मिलेगा आपको, और उनसे कीर्तन सुनने को मिलेगा, भगवान के सामने नाचने का अवसर मिलेगा कार्तिक के मास में। तो ये महावीर वाटिका दरियागंज से प्रारंभ होगी दोपहर 12 बजे, और सायंकाल लगभग 6:30 तक वापस महावीर वाटिका दरियागंज में समाप्त होगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।